बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक दिन इस धरती का जो बादशाह था, इस धरती का जो सम्राट था, वो अपने बगीचे में घूमने निकला और जब टहल रहा था तो उसके पैरों में कांटा चुभा। उसे बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ और महल में आने के बाद उसने एक सभा बुलाई। क्या किया जाए जो दोबारा ऐसी घटना न घटे। देश और विदेश के बहुत बड़े विचारवंत लोग आए, बहुत सारे विचारशील विद्वान महर्षि मनीषी आए। कई दिनों तक इस बात पर चर्चा हुई कि क्या किया जाए और अंत में उन विचारशील लोगों ने यह निर्णय किया कि इस संपूर्ण धरती को चमड़े से ढक दिया जाए ताकि राजा को फिर से कभी कांटा न चुभे। और यह निर्णय की घोषणा की गई, सारा शहर, गांव, धरती निवासी सोचने लगे फिर जीवन ही असंभव हो जाएगा अगर ऐसा कर दिया जाए तो। खेती कहाँ होगी, किसान क्या करेंगे, अनाज कैसे पैदा होगा अगर संपूर्ण धरती को चमड़े से ढक दिया जाए तो। सभी लोग राजा के पास आए, प्रार्थना करने लगे कि कुछ कीजिए, ये तो मानवता की ही हत्या हो जाएगी। फिर से विचारशील लोग, वो सारे विद्वान फिर से बैठे कुछ और उपाय सोचने के लिए। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि धरती पर जितने कांटे हैं उन सबको हटा दिया जाए। धरती पर कांटे और जितनी धूल है उसको समाप्त कर दिया जाए तो इस पृथ्वी के सफाई का कार्यक्रम बना। हजारों और लाखों लोग सफाई करने लगे, एक कांटा भी ना रहे और थोड़ी सी धूल भी ना रहे। परंतु धूल के बादल उठे आसमान में, कई सारे लोग बीमार पड़ गए, कुछ कुछ मर भी गए। इतनी धूल उठी। फिर से लोग राजा के पास आए और कहे कि ये कैसा अत्याचार है, आपको एक कांटा चुभ गया और उसके लिए मानव जाति को इतना बड़ा दंड। फिर से सभा बुलाई गई और फिर निर्णय किया गया कि संपूर्ण धरती को पानी से सींच दिया जाए ताकि इस धरती पर जरा भी धूल ना रहे और सारे कांटे धुल जाए। सारे कुएं सुखा दिए गए, इतना पानी निकाला गया और धरती को धोने का कार्यक्रम बनाया गया। नदियां सूख गई, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ मच गया, इतना कीचड़ जो इस संसार ने कभी ना देखा होगा। फिर से लोग राजा के दरबार में गए, महाराज ये क्या हो रहा है, आपने तो हमारा जीना दुभर कर दिया है। और उतने में एक बूढ़ा व्यक्ति राजमहल में आया। उसने कहा कि हे राजन, उसने कहा क्या कहा होगा, हे राजन, मैं आपके लिए ये जूते बनाकर लाया हूं, कृपया इसे पहन लीजिए। राजा आश्चर्यचकित हो गया, ये बात हमें क्यों नहीं सूझी, इतने विचारशील, इतने विद्वान लोग राजमहल में हैं और इतनी दूर दूर से आए, किसी ने भी ये क्यों नहीं सोचा कि बजाय इसके कि धरती के सारे कांटे ही निकाल दिए जाए, धरती की सारी धूल ही झाड़ दी जाए, बजाय इसके कि चमड़े से धरती को ढक दिया जाए, हम यदि अपने ही पैरों को जूते से ढक दे तो शायद हम सुरक्षित होंगे। जीवन की इस यात्रा में क्या हमारे पास भी ऐसे कोई जूते हैं, या हम ये सोच रहे हैं कि इस धरती के, इस जीवन की धरती के, इस जीवन के मार्ग के सारे कांटे पहले धो डाले तो क्या हम सुरक्षित रहेंगे? क्या यह संभव है? क्या दूसरों को दुख देकर, पीड़ित कर हम स्वयं को सुरक्षित करें? क्या करें? और कांटे तो होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि यहां कांटे न चुभे, परंतु हमें चलना है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ, एक नया मार्ग, एक अभिनव मार्ग रचना होगा। कांटे न हो ये हो नहीं सकता, कांटे तो होंगे। तो पहली चर्चा इस ब्राह्मण जीवन में, ऐसे वो कौन से कांटे हैं जो चुभते हैं, पीड़ा होती है, दर्द होता है, खून बहता है, आंसू बहते हैं, स्मृति रहती है, भूलता नहीं, ऐसे वो कौन से कांटे हैं जो अब भी दिल में छुपे चुभे हैं, रक्त धारा बह रही है, पट्टियां बहुत लगाई है, पर अविच्छिन्न धारा, अन इंटरप्टेड फ्लो चालू ही है। तो कुछ चर्चा उन कांटों की करेंगे, सिक सिक, चुक चुक और मरमर। यह परिभाषा है अर्पिताओं की और निवेदिताओं की और समर्पिताओं की। इस समर्पण के जीवन की, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक मास नहीं, एक साल नहीं, प्रतिपल, हर समय झुक झुक और सिक सिक और मरमर। तो चर्चा हम करेंगे उन कांटों की, और चर्चा करेंगे उस जूते की, उन जूतों की। अगर उन्हें पहन लिया जाए तो कोई भी कांटा चुभेगा नहीं, और ये जूते ऐसे भी हैं कि अगर उन्हें पहन लिया जाए तो जो पुराने कांटे चुभे हुए हैं वो भी निकल जाएंगे। अब तक निकले नहीं है, दोनों हाथ पकड़कर खींच रहे हैं परंतु निकल नहीं रहे हैं। शास्त्रों में तीन प्रकार के तापों की चर्चा है, आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदिभौतिक। वैसे ही इस ब्राह्मण जीवन में भी तीन प्रकार के ऐसे कांटे हैं। उसमें से दो प्रकार के कांटों की हम यहां चर्चा करेंगे। एक है शारीरिक, एक है मानसिक, एक है आध्यात्मिक। शुरुआत करते हैं मानसिक कांटे। उसमें सात अलग अलग प्रकार के कांटे हैं जो हर एक को चुभते हैं। कोई भूलता है, कोई भूल जाता है, कोई जानबूझकर नहीं भूलता, इसलिए कि ऐसा ही कांटा जिसने हमें चुभाया है। अवसर की तलाश है, अवसरवादी, मौका परस्त जिसको कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में अपॉर्चुनिज्म, अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म। अवसर की तलाश है बस, अवसर आ जाए और वही कांटा निकालकर शब्दों के द्वारा, कर्म के द्वारा या किसी और के द्वारा। पहला कांटा मानसिक में, धोखा, जिस पर बहुत विश्वास किया उन्हीं से धोखा, जिनको बहुत प्यार किया उन्हीं से धोखा, जिनको अपना समझा वही पराये हो गए। वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, वो कोई माता भी हो सकती है, वो कोई भाई भी हो सकता है, वो लौकिक का कोई हो सकता है, वो बाहर का कोई सहयोगी हो सकता है। बहुत विश्वास रखा और एक दिन अचानक कहीं और से पता चला कि उसने धोखा दिया है। बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है, ये कांटों का जंगल है। ऐसा हो नहीं सकता कि सुबह से लेकर रात तक कोई कांटा न चुभे। कांटा चुभना ही है। इसके लिए एक पाठ जो बाबा ने पक्का कराया है, केवल और केवल एक, और कोई भी विश्वास के लायक नहीं है मेरे अतिरिक्त। जीवन की ऐसी बातें किसी को बताई ये समझकर कि ये और किसी को न बताएगा या बताएगी, और उसने बता दी, और हमें कहीं और से पता चला। एक सूक्ष्म धोखे की फीलिंग, और इतना मौन में सब कुछ हुआ कि उसकी कहीं चर्चा भी नहीं कर सकते। ये कांटा पहला, पहले केवल कांटों की चर्चा करेंगे। कांटों की चर्चा से ही कांटे चुभते हैं, केवल चर्चा मात्र से ही अनुभव होता है। दूसरा कांटा, कांटे बहुत है परंतु जूतों की भी चर्चा करेंगे, इसलिए दुखी नहीं होना है। दूसरा,
निंदा। हिंदी में एक शब्द है निंदा, सुख। कई आत्मा है, उन्हें निंदा करने में बहुत सुख की अनुभूति होती है। जब तक किसी की निंदा ना करे, नींद नहीं आती है। नींद और निंदा बहुत अच्छा संबंध है दोनों का। यहां पर सब कुछ सहन करना पड़ेगा निंदा को, और ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, चाहे कुछ भी करो, लोग निंदा करेंगे जरूर। परंतु तब भय की बात नहीं है जब संसार के लोग निंदा करते हैं। कांटा चुभता तब है जब यहां के लोग निंदा करते हैं। क्या हम तैयार हैं इस कांटे को सहन करने के लिए, इस उपहास को सहन करने के लिए? और ये होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा। निंदा करेंगे, चाहे कुछ भी करो। वो दिखाते हैं ना, शंकर और पार्वती दोनों एक बार नंदी बैल के साथ जा रहे हैं। लोग हंसी उड़ाते हैं, कितने मूर्ख हैं, बैल है फिर भी पैदल जा रहे हैं। तो शंकर जी सोचते हैं कि बात तो सही है, तो पार्वती को कहते हैं कि तुम बैल पर बैठ जाओ। आगे बढ़ते लोग कहते हैं कैसी नारी है, पति को पैदल और खुद बैठ गई। वो सोचती है बात तो सही है, खुद उतरती है, शंकर जी को बिठाती है, फिर आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कैसा पुरुष है, पुरुष का कर्तव्य अपनी पत्नी का देखभाल करना, ये उसको चला रहा है और खुद बैठा हुआ है। फिर दोनों ही बैठ जाते हैं बैल पर। लोग कहते हैं कैसे निर्दयी दाम्पत्य है, क्या वो पशु, वो बैल कुछ कहता नहीं, इसके लिए कुछ भी करेंगे। सोचते अब क्या करें, तो दोनों बैल को ही उठा लेते हैं, सामने से दो पैर और पीछे से दो पैर। लोग कहते कैसे मूर्ख लोग हैं। ऊपर देखो, ऊपर देख के चलो, तो लोग कहते हैं ये तो बस ऊपर ही हवा में ही जीते हैं, नीचे देख कर चलो। तो लोग कहते हैं इनको दुनिया की तो कोई खबर ही नहीं, नीचे ही देखते रहते हैं। सामने देख कर चलो तो कहते हैं अहंकार देखो कितनी है, अकड़ देखो कितनी है। यहां वहां देखो तो कहते हैं इनकी नजरों का कोई ठिकाना नहीं है। तीसरा अपमान, इंसल्ट। एक है एकांत में अपमान, एक है सबके सामने। ज्यादा दर्द कौन सा है, दर्दनाक। सबके सामने ही किसी ने डांट दिया, क्या यह ऐसा किया जाता है, इतना भी नहीं आता है, यही सिखाया क्या घर पर, चोट लगती है ना। अपमान, योगी अर्थात मान और अपमान से परे। अपमान की फीलिंग उसमें बहुत ज्यादा आती है जिसमें अभिमान उतना है। जो जितना निरहंकारी है उसे अपमान की फीलिंग नहीं आती है, परंतु जिन्होंने जितने अपने अहंकार का पोषण किया है ऐसा पोषित अहंकार आहत होता है थोड़े से भी अपमान से। कुछ ब्रह्मा कुमारी बहनें एक बार एक हॉस्पिटल में, एक भाई थे वहां पर कोई जॉब करते थे, तो उनकी तबीयत खराब हो गई थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी, तो वो भाई ने उनको हॉस्पिटल लेके गया। ओपीडी में भीड़ बहुत थी, बाहर वेटिंग में बैठे रहे 15-20 मिनट बैठे होंगे, और जब उनका नंबर आया ही अंदर जाने का तो एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया और उसको पहले ले लिया गया। तो बहनें इतनी क्रोधित हो गई जब उनको बताया कि ये इमरजेंसी है। बहनें कहती है, क्या हम इमरजेंसी नहीं है, कि हम वीआईपी नहीं है। कहां से कहां निकल आता है बहुत सूक्ष्म। अभी अभी संडे में मुरली चली थी, 5 विकार और 5 विकारों के सूक्ष्म रूप। अहंकार का सूक्ष्म रूप है मेरी, मेरी कहां से आई, बाबा ने कहा था उसमें, मैं, मेरा, मेरी, हरी वरी और करी की बात बाबा ने जहां की थी। ये सब होगा। इंग्लिश में एक कहावत है, टू पॉकेट द इंसल्ट, इंसल्ट को पॉकेट में डाल देना। अगला अविश्वास, हम पर अविश्वास किया जाए। इतने समय से हम यहां पर है, सब कुछ छोड़कर यहां आए हैं, उसके बाद भी अविश्वास, वो एक कांटा है और कांटे की तरह अंदर चुभता है। इतने समय से यहां रह रहे फिर भी अविश्वास किया जाए तो दर्द होता है। अगला असहयोग, हमने किसी को बहुत सहयोग दिया, वो बीमार थे तो रोज मिलने गए, हम 4 दिन से बीमार पड़े हैं, पूछता भी नहीं कोई, पूछता भी नहीं कि क्या खाने की इच्छा है। एक भाई बीमार पड़ा था उधर शांतिवन में, एवरेल्दी में, किसी भाई को कहा कि कुछ लेके आओ, सुबह कहा था, वो शाम को आया खिचड़ी लेकर। मरीज बेचारा पेट पर ही लेटा हुआ इंतजार कर रहा था, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। असहयोग जब भी जिसी आत्मा से मिलता है, इसके लिए सहयोग भी निष्काम हो, ये सोचकर नहीं कि हमने सहयोग दिया तो वो भी दे। अपने कर्मों को निष्काम करते चलो, कर दिया और भूल गए, सेवा कर दी आत्माओं की, किसकी की वो भी ना पता, बस कर दिया, याद नहीं रखना है, लिस्ट नहीं बना के रखनी है कि इस किस को हमने मदद की, इस किस का हमने कोर्स कराया, इस इसको हमने ज्ञान में लाया। अपने त्याग का प्रदर्शन नहीं करना है, त्याग ऑन डिस्प्ले, त्याग जितना गुप्त हो और जितना सूक्ष्म हो उतना ही बल भरेगा आत्मा में, उसी से दुआएं प्राप्त होगी। कितने हुए? 5। छठवा, झूठा आरोप, फॉल्स एक्यूजेशन। हम निर्दोष हैं, परंतु फिर भी आरोप लगाया जाए कि ये तुमने ही किया है। हमें पता है सत्य स्वयं सिद्ध है, असत्य के सूर्य को असत्य के बादल ढक नहीं सकते, थियरी पता है, पर उस समय सत्य पर विश्वास थोड़ा कम होता है और हम संघर्ष करते हैं, सिद्ध करते हैं, रैशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन, मैं निरपराध हूं, ये सिद्ध करना। एक है सत्य को फिर क्या करना, कुछ भी नहीं करना, चुप रहना और मान लेना, अपनी बात को अनुत्तेजित स्वर में कह देना और चुप हो जाना। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं कहो, जो सत्य है उसको कह देना और चुप हो जाना। ये संसार षड्यंत्रकारी है, आरोप दूसरों पर लगा देना ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे हम स्वयं सुरक्षित हो जाते हैं, और एक बचाव का बहुत सहज मार्ग है। जिन्हें भी खतरा मालूम पड़ता है, सबसे पहला काम आरोप दूसरे पर आरोपित कर देना किसी को, और ये कांटे की तरह चुभता है अंदर। क्या इसलिए आए थे यहां? जीवन तो देखो हमारा, उसके बाद सोचना। परंतु अगर उन्होंने ऐसा सोचा होता तो ये कहा ही नहीं होता। और ये आरोप लगेगा, और सबसे ज्यादा दर्द और सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब पवित्रता पर कलंक लगाया जाए। चोरी की तुमने, ठीक। ऐसा किया तुमने, वो भी ठीक। ये तुमने खा लिया, वो भी ठीक। खाया होगा, भूख लगी तो क्या करेंगे। पर कोई कुछ ऐसा कर दे या कह दे तो दर्द होता है। उस भाई के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? ऐसा कोई कह दे तो पीड़ा होती है और दर्द होता है। परंतु ऐसा भी होगा। अग्नि परीक्षाएं हैं, सबको पार करना ही पड़ेगा। बंगाल में बलि चढ़ाते हैं, एक छोटा सा बकरी का बच्चा अपनी मां से पूछता है, मुझे रास फल खाना है। रास फल एक प्रकार का फल होता है जो कि कार्तिक की ऋतु में उगता है। तो उसकी मां उसे समझाती है, बेटा अभी समय है, अभी दुर्गा पूजा है, अगर तू उसमें बच गया तो शायद खा सकेगा, परंतु दुर्गा पूजा के बाद काली पूजा भी है कुछ समय के बाद, अगर तू उस काली पूजा में भी बच गया, अगर तेरी बलि नहीं चढ़ाई गई तो शायद तू उस रास फल को खा सकेगा, परंतु काली पूजा के बाद जगतदात्री पूजा वो पूजा भी है, उसमें अगर तू बच गया तो ही तू उस फल को खा सकेगा। इतनी सारी चीजों से बचना होगा, तब कहीं जाके वो फल मिलेगा। सातवां, विरोध, अपोजिशन, क्रिटिसिज्म, विरोध होगा और विरोध भी दर्द पहुंचाता है, कांटे की तरह चुभता है अंदर। जब जब विरोध होता है हमको ऐसा लगता है कि हमारी बात सभी मान लें, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है, हर एक के कर्म बंधन भिन्न भिन्न है, हर एक की बीमारी भिन्न भिन्न है, हर एक के विकार भिन्न भिन्न है, हर एक का प्रारब्ध भिन्न भिन्न है, हर एक का भाग्य भिन्न भिन्न है, हर आत्मा अलग अलग है, हर पुरुष भी अलग अलग है, हर स्त्रिया भी अलग अलग है। ऐसे नहीं कि ये सारे पुरुष एक जैसे हैं, पुरुषों में भी पुरुष पुरुष अलग अलग है, स्त्रियों में भी स्त्री स्त्री अलग अलग है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये सब एक जैसे हैं, उनमें भी भिन्नता है। यदि हम एक दृष्टिपात करेंगे कि जिन भाइयों को हम जानते हैं कितना अंतर है उनके स्वभावों में, जिन बहनों को हम जानते हैं उन बहनों में भी कितना अंतर है, किसी को ज्ञान योग में बहुत रुचि है, किसी को बिल्कुल नहीं, किसी को सेवाओं में बहुत रुचि है, ज्ञान योग में बिल्कुल नहीं, किसी को केवल योग अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा नहीं लगता, किसी को मुरली में बहुत रस है, किसी को नहीं है, किसके लिए मुरली आना पढ़ना और हो गया, कोई है जो उसके ऊपर तैयारी करते हैं, सोचते हैं क्या करना है, कैसे समझाना है, कितनी वैरायटी है, कोई है जिनको इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हमारी ओपीडी में एक बहन आई थी, उसकी अजीब सी बीमारी थी, वो कहती थी कि मैं सोती हूं 9 बजे 8 बजे कभी कभी और दूसरे दिन उठती हूं 12 बजे। हमने कहा आप सेंटर में रहते हो? उसने कहा हाँ। तो आपको कोई कुछ बोलता नहीं? हमारी बड़ी बहन जी का बहुत प्यार है मुझ पर। फिर उठ के क्या करते? उठ के सीधा भोजन, और भोजन के बाद फिर नींद, और शाम को कहीं गीता पाठशाला, फिर रात में फिर भोजन और फिर नींद। तो हमारी बड़ी बहन जी ने आपके पास भेजा है, कुछ दवाई हो तो दो। अजीब अजीब संस्कार। किसी को कुछ दिखाई देता है, किसी को कुछ दिखाई देता है। एक बहन आई थी, वो कहती थी मुझे दिन भर में 20 बार रोना आता है रोज। किसी ने कुछ कहा कि रो दिया, फिगर बताई थी 20। थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी, जैसे इंतजार में है कोई कुछ कहे और मैं रोऊं। जगदीश भाई कहानी बताते हैं ना, उस माता की जो सबसे जाके झगड़ती है, सारे गांव वाले ने एक दिन सोचा कि इससे बात ही नहीं करेंगे, तो कुएं के पास गई, अपनी परछाई देखी और उससे लड़ने लगी। संस्कार इतने भिन्न भिन्न है, उतने वैरायटी संस्कार है। उस क्लास में भी कहा था, एक बहन आई थी, जिसको हर दो दो घंटे में भोजन, मधुबन में जब आई तो हर दो दो घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। उसकी दूसरी बहन से हमने पूछा ऐसा क्यों, तो उसको उन्होंने कहा, बाद में बताया कि सेंटर पर हर चीज गिनी हुई है, इसको खाने को नहीं मिलता है उधर, तो यहां आती है तो उसको दो दो घंटे में भूख लगती है, क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं, ये भी खाऊं टोली भी खाऊं, ये भी खाऊं भोजन भी खाऊं, वहां से कुछ ले भी जाऊं भोग का, कमरे में भी ले जाऊं, खाऊं खाऊं दिन भर। संस्कार भिन्न भिन्न है। बाबा ने एक मुरली में कहा है, इस पत्तों के जो आसपास के पत्ते हैं तुम्हारे, उन्हें जानना बहुत जरूरी है। तुम जहां रहते हो वहां के आसपास के जो पत्ते हैं इस झाड़ के, उनके संस्कारों को समझना, उनके स्वभाव को समझना, अगर नहीं समझे तो बार बार डिस्टर्ब। तो ऐसे ये कितने काटे हुए, 7। पहला धोखा, दूसरा निंदा, तीसरा अपमान, चौथा अविश्वास, पांचवा असहयोग, छठवा असहयोग किससे, बाहर वाले असहयोग दो तो इतना दर्द नहीं होता है, अपने जो है वो अगर असहयोग दे तो दर्द होता है। अगला झूठा आरोप, इन सभी में सबसे संगीन ये है। और लास्ट विरोध, क्रिटिसिज्म। ये थे मानसिक, अभी शारीरिक कांटे क्या हो सकते हैं कौन बताएगा, इसमें भी 7 है। सबसे पहला शरीर की बीमारी, अचानक से आ गई बीमारी, कोई भी शरीर की बीमारी, चाहे अचानक वाली या लंबे समय वाली। एक बहन है, इतनी सेवाएं करती थी, एक दिन बाइक पे स्कूटी पर जा रही थी और एक्सीडेंट हो गया, यहां पर स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी हुई, दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालिस। 30-35 साल की उम्र होगी अभी, उस बात को 2-3 साल हो गए। कई बार हॉस्पिटल में भर्ती होकर गई, कई बार 2-2, 3-3, 6-6 मास तक कुछ भी नहीं कर सकती, ये हाथ भी नहीं हिला सकती, दोनों पैर भी नहीं हिला सकती। ऐसी आत्मा जो दिन रात सेवा करने वाली, भागने वाली सेवा के लिए, बस अभी इस अवस्था में हाथ भी नहीं हिला सकती, क्वाड्री पैरालिसिस जिसको कहते हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर। उसकी लौकिक बहन है, वो उसकी सेवा करती है दिन रात, और कौन करे, सारी सेवाओं को छोड़कर कौन देखे। पर हमने एक बात देखी उस बहन में, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, कोई उदासी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, बार बार अलग अलग तरीके से पूछने की कोशिश की कि कोई दुख तो नहीं है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है, परंतु है ही नहीं, बहुत अच्छी स्थिति है, जबकि कुछ नहीं कर सकती और कोई चांसेस नहीं है ठीक होने के। अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, एम्स, हर बड़े बड़े हॉस्पिटल में कई समय तक रही है, अभी अपने घर पर है, सेवा भी नहीं कर सकती। अभी अभी किसी ने उनको चेयर लेके दी है, इलेक्ट्रॉनिक चेयर, बटन दबाते ही वो अपने आप चलती है, अभी अभी वो भी, अब तक नहीं थी। 6 मास हॉस्पिटल में थी, शायद एक ही या दो बार पांडवों ने उसको अरेंज किया था जाने के लिए, शरीर की बीमारी और अचानक आई हुई बीमारी तो और ये सब होगा। ये कलियुगी देह है, इस देह के भी हिसाब है, किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये, छोटे से लेकर तो चाहे कितना भी बड़ा महारथी हो, दादी हो, दादा हो, कोई भी हो, सभी को हिसाब किताब आने वाले हैं। और वो किस रूप में आएंगे? कैंसर के रूप में आएंगे या कोई एक्सीडेंट के रूप में आएंगे, पता नहीं, पर आएंगे जरूर। दूसरा, स्वजनों की बीमारी और मृत्यु। पहला था स्वयं की बीमारी, दूसरा आप्तजन, स्वजन, नजदीक वाले, उनकी बीमारी या फिर उनकी मृत्यु। कोई अनन्य है जिसने शरीर छोड़ दिया है और उसको भूल ही नहीं पा रहे, इतने साल हो गए, चाहे ज्ञानी ही आत्मा क्यों ना हो, परंतु भूल नहीं पा रहे, उसी की याद है। एकांत में जाओ तो बस वही याद। और कोई स्वजन यदि बीमार है तो सारा ध्यान उसकी तरफ। ये भी एक, पहला तो अपनी बीमारी है वो तो भी थोड़ा कम, पर ये थोड़ा ज्यादा चुभता है, स्वजनों की बीमारी। तीसरा, शारीरिक कमजोरी। बीमारी कोई नहीं है, रिपोर्ट सभी नॉर्मल है, डॉक्टर बोलते एकदम ठीक हो, परंतु अथाह कमजोरी, उठते ही थकान, उठो अमृत वेला और थकान, थोड़ी सी सेवा करो और थकान, धूप सहन नहीं होती, ठंड ज्यादा लगती, मौसम में बदलाहट तो इधर स्थिति में हलचल, मौसम सूट नहीं करता, ये बहुत फेमस वाक्य है, एलर्जी है। शारीरिक कमजोरी। चौथा, हैंडीकैप जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, अचानक से कोई एक्सीडेंट, फ्रैक्चर। कितना जल्दी व्यक्ति अपने आप को एडेप्ट कर लेता है, ढाल लेता है उसमें। अभी सेवा कर रहे थे, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, अचानक फ्रैक्चर, अभी बैठो डेढ़ मिनट बेड पर। हमने बहुत सारी ऐसी आत्माएं देखी है कि अब तक वो सेवा कर रहे थे, अब बाबा ने सेवा का दूसरा अवसर दिया है, अब बैठकर विश्व की सेवा, मनसा सेवा करेंगे। परंतु दूसरी कुछ ऐसी आत्माएं भी बहुत सारी देखी है, इतनी बेचैन, इतनी हलचल, उस एक्सीडेंट का वर्णन इतनी बार कर चुके हैं, जो भी नया आता है मिलते हैं, कभी कभी लगता है एक टेप अगर लगा दो तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं यहां से ऐसे जा रहा था, फिर वहां से वो गाड़ी आई, हम इस गाड़ी में थे, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर गिर गए, फिर वहां से लोगों ने उठा के वहां लेके गए, फिर वो हॉस्पिटल से इधर गए, फिर वहां से उधर गए, फिर एक ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए, वो डॉक्टर ठीक नहीं था, फिर वहां पर पता चला, फिर वहां से वहां, और अभी यहां है आपके सामने। और कोई अच्छा सुनने वाला मिल जाए तो और अधिक विस्तार हो सकता है। हैंडीकैप किसी भी कारण से, चाहे प्राकृतिक आपदा की वजह से, चाहे एक्सीडेंट की वजह से, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कुछ नहीं होगा मुझे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनिश्चिंतता एक नियम है जीवन का। अगला बुढ़ापा। एक दिन अचानक बाल सफेद दिखा और ख्याल आ गया कि हम भी बूढ़े हो रहे हैं। कितना दर्द होता है जब किसी को उम्र बतानी पड़ती है, 20 में जब है और जब 30 में प्रवेश कर जाते हैं वो उसमें थोड़ा दर्द, और जब जब 40 की सीरीज में जाते हैं तो ज्यादा दर्द बढ़ता है। एक अज्ञात सा डर, और 40 से जब 50 में एंट्री करते हैं तो भी डर होता है। कोई कन्या आके कह दे आंटी तो कितना डर लगता है, कितना दर्द होता है। हम सोचते हम ही तो कन्या है, हमारे हॉस्पिटल में ब्रह्मा कुमारी बहुत सारी बहनें एडमिट होती है और हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स है वो ज्ञान वाले नहीं है, वो तो बाहर के आते हैं, तो वो कहते हैं माताजी। हम उनको समझाते हैं उसको माताजी मत कहो, ये आंटी कहते हैं या ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। किसको समर्पित? ब्रह्मा कुमारी, बाल ब्रह्मचारिणी। उनको समझाना पड़ता है अलग से, इनको बहन कहो, चाहे 60 साल की हो या 70 साल की या 80 साल की, दादी तो बिल्कुल मत कहना। रामायण में दिखाते हैं दशरथ को पता कैसे चला, वो देखता है आईना तो उसको बाल सफेद दिखाई देते हैं, तब जाता है गुरु के पास कि कोई मार्ग बताओ, कि अब तक कोई पुत्र नहीं है, कुछ मार्ग बताओ। जाई विधि होई नात हित मोरा, जिससे मेरा हित हो ऐसा कोई मार्ग बताओ। ये नहीं कहता कि मुझे पुत्र दो, इतना बड़ा राज्य है, पता कैसे चलता है उसको जब यहां कहे एक बाल सफेद दिखता है तब। पर क्या बुढ़ापे को रोका जा सकता है? क्या उतने ही हम रहेंगे? 23 साल के 24 साल के जब आए थे यहां, हम बूढ़े होंगे और नए नए आएंगे। रास्ते पर चलने वालों को क्या पता हम कौन है, वो तो कहेंगे ये आंटी। है या कि है कि नहीं? ये काटा है ना थोड़ा सा है। कितने हुए? 5, 6। छठवा, क्या हो सकता है? यहां वो इतना नहीं है, माउंट में है। क्या सीनरी? सीनियर जूनियर, शरीर वो मानसिक में आएगा, शरीर देह जानवरों के साथ कुछ हिसाब किताब है, यहां नहीं है इतना। पर माउंट में भालू, अभी अभी एक भाई को बहुत जबरदस्त अटैक किया और हॉस्पिटल में हर मास में 2-3 मरीज आते हैं। बीच में एक साधु थे स्वामी नारायण के, इतना बुरी तरह उसको मारा, पूरा ये जो था ऊपर का पकड़ के खींच लिया, कईयों की मृत्यु हो गई, कईयों को इतनी बुरी तरह जख्मी किया, इतनी बुरी तरह जख्मी किया कि बात मत पूछो। एक भाई था मधुबन का ही, कुछ दिन के लिए घर गया था। मधुबन वालों को नशा रहता है कि हम मधुबन वाले हैं और मधुबन में ही शरीर छोड़ेंगे, परंतु ऐसा हो नहीं सकता, कहां किसको शरीर छोड़ना है, समय, कारण और स्थान, ये तीन चीजें जो है पहले से ही पूर्व निश्चित है, मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय और मृत्यु का स्थान। तो वो भाई घर गया, घर में उसके पास एक गाय थी, गाय को मार्केट ले जा रहा था, उस गाय ने ऐसा सिंग घुसा दिया उसका कि ऑन द स्पॉट मृत्यु, वही के वही, इतना खून, इतना खून, हॉस्पिटल तक लेके गए, ब्रॉड डेड। यहां शायद कोई जानवर नहीं है ना, कुत्ता तो है, डॉग बाइट है वहां पर माउंट में, मंकी, बंदर, यहां पर भी है बंदर, किसको कब काट ले बता नहीं सकते हम, सांप, सांप भी है, जहरीले सांप, ऐसे ऐसे खतरनाक सांप, उनके साथ भी सबका हिसाब किताब है। वो ये देखता है ये बिके है नॉन बिके, ब्राह्मीण नॉन ब्राह्मीण, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जोक बताते हैं ना, एक ब्रह्मा कुमारी बहन वहां से आ रही है और सामने से भालू, ऐसा है नहीं, काल्पनिक। तो ब्रह्मा कुमारी बहन एकदम आंखें बंद करके योग में, तो भालू भी आंखें बंद करके योग में, भालू पूछता है तुम क्या कर रही थी, वो कहती है मैं बाबा को याद कर रही थी, पर ब्रह्मा कुमारी उसको पूछती है तुम क्या कर रहे थे, वो कहते हैं मैं बाबा को भोग लगा रहा था। क्या हो सकता है, शरीर से संबंधित कोई काटा, अज्ञात, अज्ञात, अननोन, पता ही नहीं क्या है, पर कुछ है, शरीर सब ठीक है परंतु अचानक से शरीर से कोई पेपर है, कोई उत्तेजना है, कोई विकार है, कोई काम है, कोई क्रोध है, कोई ईर्ष्या है, अचानक शरीर में हलचल उत्पन्न होती है, धड़कनें बढ़ने लगती है। एक ओपीडी में एक पेशेंट आई थी, कहती थी एक बहन यहां दर्द होता है, छाती में यहां पर दर्द होता है, तो हम लोग तो पहले यही सोचते हैं कि हार्ट से रिलेटेड है, कब होता है, चढ़ते समय होता है, बैठते हुए होता है कि सीढ़ी चढ़ते समय, एक आत्मा है जैसे ही सामने आती है इधर दर्द होता है बाकी नहीं होता है, वो अगर आ गई तो तुरंत यहां पर दर्द होता है और धड़कने बढ़ती है, धड़ 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 धड़, कब तक रहता है, जब तक वो चली ना जाए। इसकी कोई दवाई होगी तो दो, ECG करना है, एंजियोग्राफी करनी है, और भी कुछ होगा तो बताओ, अभी जाके करा देते हैं सारा। इधर जैसे सामने आई, कुछ कुछ होता है अंदर, इसके लिए वो इधर से आती है, हम इधर से जाते हैं, अज्ञात है, क्या है पता नहीं। आध्यात्मिक भी है, उसकी कभी और चर्चा करेंगे, अभी शरीर, हाँ, आत्माओं के साथ भी किसी के द्वारा शारीरिक पीड़ा, वो उसी में ले लो, अज्ञात में सारा कुछ क्या है पता नहीं, परंतु ऐसा भी हो सकता है। परंतु हम बात केवल ब्रह्मा कुमारी जीवन की कर रहे थे, ब्रह्मा कुमार जीवन की, स्त्री जीवन में तो बहुत कुछ हो सकता है, वो विषय दूसरा है। कौन से जूते पहनेंगे, क्या करेंगे, धरती को चमड़े से ढकेंगे या पानी डालेंगे और धरती को सींचेंगे, या झाड़ू अभियान, सफाई स्वच्छता अभियान चालू करेंगे, धरती के कांटों को दूर करने, जब तक इन सब का सफाया नहीं कर देते, देखते कैसे रहते हैं यहां पर, जब तक इनकी ट्रांसफर नहीं कर देते किसी दूसरे सेवा केंद्र पर, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सात प्रकार के जूते, पहला ड्रामा का ज्ञान। इस ड्रामा में हर एक्टर एक्यूरेट है, इस ड्रामा में हर एक्टर निर्दोष है, इस ड्रामा में कोई भी दोषी नहीं है, हर एक्टर संपूर्ण निर्दोष है। यह ड्रामा भगवान को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। यह ड्रामा एक्यूरेट है, एक सेकंड भी अदली बदली नहीं हो सकता। यह ड्रामा कल्प पहले जैसा रिपीट होता है, इस ड्रामा में नथिंग न्यू। यह ड्रामा कल्याणकारी है, यह ड्रामा न्यायकारी है, यह ड्रामा विविधतापूर्ण है। इस ड्रामा में जो हो रहा है वही सत्य है। इसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको सिखाने वाले हैं ड्रामा क्या है। ड्रामा की सारी पॉइंट्स उस दिन भी कहा था, 24 घंटे में एक बार, रात को सोते समय या शाम को योग में, योग शुरू करने से पहले मन में लाओ, ये ड्रामा कैसा है। ड्रामा एक्यूरेट है, जो भी आज हुआ बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी शायद संकुचित दृष्टि है, ट्यूबुलर विजन, हम उस बृहद रूप को नहीं देख पा रहे हैं, उसमें कल्याण छिपा है, अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण। हमारा दृष्टिकोण कैसा है, थॉमस एल्वा एडिसन नाम का बहुत बड़ा वैज्ञानिक कवि हुआ है, 1910 शायद, उसकी जितनी प्रॉपर्टी थी, जितनी स्टेट थी, जितना वो बड़ा लेबोरेटरी थी, सबको आग लग गई अचानक। उसका इतना सारा रिसर्च, इतना बड़ा, वो खड़ा हुआ देख रहा था। उसका बेटा भाग भाग के आया, ये कहानी रीडर्स डाइजेस्ट 1954 के एडिशन में कहीं पब्लिश हुई थी। उसका बेटा आया भाग के, ये क्या हो रहा है, उसने अपने बेटे से कहा, कुछ नहीं, अपनी माँ को बुला के लाओ, ऐसा दृश्य वो फिर कभी नहीं देख पाएगी। ऑल अवर मिस्टेक्स आर बर्नट अप, मैंने अपने जीवन में जितनी गलतियां की थी देखो सब जलती हुई, कोई दुख नहीं, कोई रंज नहीं। वैसा ही दूसरा उदाहरण थॉमस कार्ली, विदेश में एक बहुत बड़ा लेखक हुआ है, जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर किताब लिखी है इतनी बड़ी। जब उसने वो किताब लिखी, अभी प्रिंट नहीं हुई थी, मैन्युस्क्रिप्ट उसके पन्नों पर लिखा हुआ था हैंडराइटिंग से, उसका एक मित्र उससे मिलने आया, उसने अपने मित्र को वो पढ़ने के लिए दी किताब। उस हिस्ट्री की किताब है, इतिहास की किताब, मतलब कितने सारे आंकड़े होंगे उसमें, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उस पर वो किताब लिखी गई थी। जैसे यहां पर वीर सावरकर ने 1857 और 1857 की क्रांति पर जो किताब लिखी समर, वैसी वो किताब जिसमें कितने सारे आंकड़े होंगे। वो मित्र अपने घर लेके गया, उसने रख दिया, ठंडी का मौसम था, हवा आ रही थी, वो उसके पन्ने उड़ गए। वो नौकरानी आई, उसको लगा रफ पेपर है, वहां पर जो आग जलती है विदेशों में, घर में ही, सब उसमें डाल दिए और वो सब जल गए। तो ये मित्र जब थॉमस के पास आया वापस, तो इतना उसको पश्चाताप और दुख, और उसने कहा कि वो सब जल गया। थॉमस कार्ली ने एक शब्द भी नहीं कहा और फिर से सब कुछ याद कर वो किताब दोबारा लिखी। और आज के युग में जो किताब अवेलेबल है वो सेकंड जो उसने लिखी है दूसरी बार वो है। अब तक जो किया सब नष्ट हो गया परंतु दुख नहीं। फिर से उमंग उत्साह से लिखा और हमारे पास ड्रामा का श्रेष्ठतम ज्ञान है। ड्रामा में जो भी हुआ जैसा भी हुआ बहुत अच्छा, कोई कंप्लेंट नहीं। पहला ड्रामा, दूसरा धारणाएं। बाबा ने हमें धारणाएं सिखाई है कुछ। 95 की एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है तुम्हें सहन करना है इसलिए नहीं, तुम्हें सहन करना है इसलिए क्योंकि ये बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है इसलिए नहीं, संसार कह रहा है इसलिए नहीं, ये भी नहीं कहा उसमें कि तुम्हें शक्तिशाली बनना है इसलिए नहीं, ये परमात्मा आज्ञा है बच्चे सहनशील बनो। इसलिए नहीं कि तुम्हारी गलती है, इसलिए नहीं कि दूसरे ये सोच ले ये तो सहन ही करते इनको सताओ, इसलिए नहीं, परमात्मा आज्ञा है सहनशील बनो इसलिए तुम्हें सहन करना है। और सारे कांटे सहन करने पड़ेंगे, सारी अग्नि की परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा। अग्नि शिखा ये जीवन है, ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात अग्नि शिखा जीवन, आग की लपटे है यहां पर, उसी में तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। जीवन के समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं, समर हो रहा है यहां पर, द्वंद हो रहा है, विप्लव हो रहा है, क्रांति का ये जीवन है। इसलिए धारणा है। तीसरा योगी जीवन, ये योगी जीवन है। योगी अर्थात जय पराजय निंदा मान अपमान सब कुछ सहन करने वाला, समभाव रखने वाला, बैलेंस्ड लाइफ वाला, किसी से प्रभावित नहीं होने वाला, ऐसा अचल अडोल ये जीवन है। इसलिए ये जूता है। चौथा कर्म का हिसाब किताब। हमें पता है ये जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, कर्म का हिसाब किताब है। हमारे ही कर्म हमारे तक लौट कर आ रहे। ये जो ग्लास है और एक जो पानी है, हमने कभी किसी को दिया होगा तब हमें मिल रहा है आज। बिना हिसाब किताब के कुछ भी नहीं होता है। हम ट्रेन में बैठे हैं, किसी से कुछ कहानी, अचानक एक व्यक्ति आता है बहुत सारी गालियां देकर चला जाता है, उसको हम ना जानते हैं ना पहचानते हैं, हमारा कोई लेना देना उसके बाद कभी मिले भी नहीं, बस वो आया और दो तीन शब्द सुनाकर चला गया। क्यों, हमने भी सुनाया होगा। मुरलियों में आता है ना, बाबा हमारा पति हमको बहुत मारता है, उसकी बुद्धि का ताला खोलो, बाबा कहते तुमने भी मारा होगा। कर्मों का हिसाब किताब। अगला क्या हो सकता है, जो ज्ञान सुनाते हैं दूसरों को उनको ज्ञान सुनना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। आप सभी सुनाने वाले हैं, आपको क्या सुनाए, कौन सा जूता पहने, और साक्षी भाव। इस ड्रामा को साक्षी होकर देखो, जो कुछ इसमें हो रहा है लिप्त नहीं होना है, अच्छा बुरा सब कुछ साक्षी होके। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल चाखा। अभी दिख रहा है असत्य की विजय हो रही है, सत्य हार रहा है, परंतु ये कहावत बाहर के जगत की नहीं है, ये कहावत अंत जगत की है, जहां सत्य की विजय होती है। बाहर तो असत्य जीतता है, दिखाई देता है, वो भी भ्रम मात्र है, परंतु जिनके पास सत्ता है, अथॉरिटी है, पावर है, वही आगे है, बाकी सब नीचे। पॉलिटिक्स द्वापर में राजनीति कहां से चालू होगी? यहां से ही सब चालू होगा, बाबा ने कह दिया है। भक्ति मार्ग यहां से चालू होगा ना, सब कुछ वहां से चालू होगा, सब कुछ। ब्राह्मण होते हैं ना द्वापर में, कैसा बड़ा पेट होता है उनका, भोजन के लिए जाते हैं और साथ में लेकर भी जाते हैं। कहां से संस्कार भर के जाएंगे, सारे संस्कार यहीं से भरेंगे ना। साक्षी भाव कितने हुए? पांच। छठवा, क्या किया जाए? सभी को पता है समान, जो आत्मा जितना समान में स्थित है वो उतना सेफ है। समान का अभ्यास। अगला है समर्पण भाव। जितना समर्पण भाव है उस एक के प्रति वो रक्षा करेगा। एक छोटा सा बच्चा है वो सड़क पर गिर जाता है, उसे चिंता नहीं है कि मेरी रक्षा कौन करेगा, उसे पता है मेरी मां है वो करेगी रक्षा। इतना समर्पण भाव है कि वही करेगा सब कुछ। वहां एक छोटा सा जैसे बच्चा, हमने सब कुछ कर लिया उसके बाद भी चीजें कभी कभी नहीं होती है, वहां फिर समर्पण भाव। राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है, एक बहुत सुंदर गीत है सूफी, राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है। सूफी संत लिखता है कि मैं किस बात का अहंकार करूं, मेरे पास इतना बड़ा बंगला और घर है परंतु तेरे पास बिजली है, कब तेरी बिजली गिर जाए और नष्ट कर दे। राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है, तेरे पास बिजलियां है मेरे पास आशियाना, मेरे पास आशियाना है परंतु तेरी बिजली कभी भी गिर सकती है, इसलिए राजी तेरी रजा में। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। भक्ति मार्ग में यह समर्पण भाव है। यहां हमारे पास ड्रामा का ज्ञान है, वहां वो नहीं था, उनके पास समर्पण भाव बहुत अधिक मात्रा में था, बहुत अधिक समर्पण भाव, और वो समर्पण भाव ही उनकी रक्षा करता था। बस वो है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। वो चाहे जैसी उसकी इच्छा, thy will shall be done, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं तेरी इच्छा, thy will shall be done, तू जो चाहे वह होगा। समर्पण भाव। और अंतिम साथ हो गए कि बाकी है? हो गए ना, तो बस फिर समर्पण भाव की एक बात बताकर इस क्लास को पूरा करते हैं और फिर दूसरा क्लास कुछ 10 मिनट के बाद चालू करेंगे। एक व्यक्ति होता है वो राम का भक्त होता है, सारे दिन भर कपड़ा बुनता है और बेचता है। कोई ग्राहक आता तो पूछते हैं कैसा दिया, वो कहता था राम की इच्छा से ये कपड़ा मैंने बनाया और राम की इच्छा से ही मैंने इसको सिलाया, राम की इच्छा से इतने में खरीदे था, इतना मेरा मुनाफा है और इतने में तुमको बेच रहा हूं। और वो आ जाता था रोज। एक दिन वो घर आया और घर के बरामदे में बैठा था कि डाकुओं की टोली वहां से गुजर रही थी, उनको लगा ये अच्छा आदमी है, हम जो लूट के लिए जा रहे हैं इसके ऊपर रखेंगे, लादेंगे और ले जाएंगे इसको, तो उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो एक राजमहल में जाते हैं, वहां पर अंदर घुसने का प्रयत्न करते, बहुत सारा तिजोरी का माल भरते हैं और जैसे निकलने ही वाले रहते तो राजा के सिपाही देख लेते और आ जाते और ये सारे चोर भाग जाते और ये जो व्यक्ति होता है उसको पकड़ लेते, तुमने चोरी की है, और उसको कारागार में डाल देते। दूसरे दिन राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है उस व्यक्ति को, उस भक्त को। तब तक उसके गांव वाले भक्त भी मित्र भी आ जाते हैं, वो सब राजा को समझाते ये निर्दोष है। राजा कहता है मैं निर्णय करूंगा, क्या सफाई देना चाहते हो कहो, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है, तुम चोरी कर रहे थे। वो व्यक्ति अपनी सफाई में नीचे का वक्तव्य कहता है। उस दिन राम की इच्छा से मैं सारे दिन भर अपनी दुकान में था, फिर राम की इच्छा से मैं घर आया, फिर राम ही की इच्छा से मैं वरांडे में बैठा था, पर उतने में राम की इच्छा से ये डाकू आ गए और श्री राम जी की इच्छा से उन्होंने मुझे पकड़ा और राम जी की इच्छा से वो मुझे ले गए और राम की इच्छा से उन्होंने तिजोरी लूटी और राम की इच्छा से वो तिजोरी मेरे सिर पर रखी और राम की ही इच्छा से आपके सिपाही वहां आ गए और जैसे ही बहुत सिपाही आए राम जी की इच्छा थी कि वो सारे डाकू भाग गए और राम की ही इच्छा से आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया और राम की इच्छा से सारी रात मैं आपके कारागार में रहा और राम की ही इच्छा है कि मैं अभी आपके सामने हूं। राजा को आश्चर्य लगता है ऐसा व्यक्ति देखकर, कहता है ये चोरी तो नहीं कर सकता है, उसको छोड़ देते हैं। तो वो अपने गांव वालों के साथ जाने लगता है और कहता है राम की इच्छा से राजा ने मुझे छोड़ दिया। ऐसा समर्पण भाव। ओम शांति।